بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسان جب صبح اٹھتا ہے تو جس عالم فطرت میں، عالم طبیعت میں، نیچر میں کچھ تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ مشاہدہ جب اس کے علم کے ذریعے سے اس کی فکر میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ فکر جب ذہنی دریچوں کو کھول کر اس کے سوئے ہوئے مغز کو بیدار کرتی ہے، ایک وہ بیداری ہوتی ہے جو نیند سے حالت یغزہ یا بیداری کی صورت میں ہوتی ہے کہ جس میں آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو اٹھاتے ہیں، اور ایک بیداری وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی عقلی صلاحیتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ہوا کا احساس، موسم، اس کے علاوہ وہ خاموشی جو فضا میں چھائی ہوئی ہوتی ہے، سورج کا نکلنا، سفیدی کا پھوٹنا، اجالے کا سامنے آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ چینجز ہیں، یہ انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں، پھر اس کے فکر میں آتی ہیں، پھر اس کے سوئے ہوئے درجے کو کھولتی ہیں. پھر جس طرح رات کا سینہ کھول کر دن نمودار ہوا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگا کر کام اور زندگی کے دن میں لوٹ آئے. اور یہی چیز اسے یہیں سے پورے دن کے لیے ذمہ دار بناتی ہے. ہمارا موضوع احساس ذمہ داری اور اس کے نتائج ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یوں کہوں کہ مرد دم تک ہمیں جس امر کی ضرورت ہے وہ یہی احساس ذمہ داری. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں، ایک زندگی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سانس. دوسری علامت کیا ہے؟ دل کی دھڑکن. تیسری علامت کیا ہے؟ دوران خون. یہ ظاہری علامتیں ہیں یا نہیں؟ خوب، لیکن ایک اور زندگی ہے جو اس زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ ہے ہماری شعوری زندگی، وہ ہے ہماری بیداری کی زندگی. اور اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ انسان ذمہ دار ہو، انسان وظیفہ شناس ہو، انسان مسئول ہو. مسئول ہو یعنی وہ اپنے آپ کو عقلی اور فکری طور پر اس بات کا پابند سمجھے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس بنا پر ذمہ داری در حقیقت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں ہر آن اور ہر لمحے ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. آپ اپنی باڈی کے ذمہ دار ہیں، اپنے بدن کے ذمہ دار ہیں. بدن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بدن کی حفاظت کرنی ہے، بدن کو موسم سرا سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے مناسب لباس پہننے ہیں. یہ لباس آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو متوجہ کرتا ہے، آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں متوجہ کرتا ہے، اور سردی گرمی سے بچانے کے لیے، موسم سرا سے بچانے کے لیے. لیکن یہ جو سانس لے رہے ہیں آپ، اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آٹومیٹکلی یہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے. آپ اپنی باڈی کے ذمہ دار ہیں، لیکن اتنے ذمہ دار نہیں کہ آپ دیکھیں کہ میرا دل جو ہے وہ ایک منٹ میں زیادہ دھڑک رہا ہے، یا ایوریج دھڑک رہا ہے، یا کم دھڑک رہا ہے. وہ آٹومیٹکلی اپنا کام کر رہا ہے. آپ جو ہیں، جتنی آپ کو نیڈ ہوتی ہے ایک منٹ میں نور اور لائٹ لینے کی، وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں. خود بہت آنکھوں کا شٹر بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے، آنکھوں کی پلکیں اٹھتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں. उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि कॉन्शियस रहने की और आपको यूँ कहूँ कि मुतवज्जे रहने की कि मैंने कितनी दफ़ा 1 मिनट में पलके झपकाई हैं। जब आपकी आँखों को नूर मिल जाता है, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से खुल जाती हैं। अब यही जो मैंने जुमला कहा, इसमें शायद 4 दफ़ा 5 दफ़ा मैंने खुद अपनी पलकों को झपकाया। तो इंसान जिम्मेदार है, लेकिन इन चीज़ों के मुताबिक जिम्मेदार नहीं है कि वो देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस चीज़ के मुताल्लिक इंसान को जिम्मेदार कहा गया है, वो उससे बढ़कर एक और चीज़ है, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से है, एक ऐसी जमात से है, एक ऐसी टीम वर्क से है कि जिसमें अगर एहसास जिम्मेदारी ना हो तो इंसान कहता ठीक है जनाब, देखा जाएगा। ये एहसास जिम्मेदारी है कि जो आपको वक्त पर ऑडिटोरियम में लेकर आता है, ये एहसास जिम्मेदारी है कि जो आपको पहले से बुक एंड कॉपी एंड पेंसिल को तैयार करने का हुक्म देता है, ये एहसास जिम्मेदारी है कि जो आपको मुतवज्जे करता है कि आज कोई नई बात पता चलेगी तो उसको हम अपने पास नोट डाउन करेंगे, तो ये एहसास जिम्मेदारी है। जिस तरह आपका आना एहसास जिम्मेदारी है, लिहाजा उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं कि आप जो हैं जब किसी लेक्चर हॉल में जाएंगे, जब किसी सेशन को अटेंड करेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ जिम्मेदारियों को अदा करना और कुछ जिम्मेदारियों से पहले तो ही इख्तियार करना, ये कभी भी अकलमंदी जी तसव्वुर की जाती है, नहीं की जाती है। हो जरा एक जानदार तो सलवार भेजिए, पता चले कौन कौन सा। खो बस ये क्या है, ये जिम्मेदारी। अब इसके बारे में मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा, बराह रास्त कलाम में वारिद हो रहा हूँ। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में इंसान को जिम्मेदार करार दिया गया है। वो खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अलामत अबदल लियअरिफून मुराद है, मारफत हासिल करें, मारफत का नतीजा इबादत होगा। और इसी तरीके से मुख्तलिफ आयात और रिवायात में जिम्मेदारी और जिम्मेदारों की शनाख्त और उनकी सिफात को बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72, इन्न अरदना अल-अमानत وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। हमने अपनी अमानत को आसमानों जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, वो डरे कि वो उसको उठा नहीं पाएंगे। वह अशरफ नमीन हा, उन्होंने इनकार किया, वो डरे, वो खौफजदा हुए, उन्होंने इनकार कर दिया। वह हमला इंसान, और इस दरमियान में इंसान आके बड़ा उसने उठा दिया। इन लोगों का ना वालू जब इंसान जालिम भी है, और जाए उठा तो लिया उसने, लेकिन क्या है कि वो जुल्म करने वाला भी है और वो जहल का भी शिकार है। ये दो सिफात ऐसी हैं कि जो मजमूई तौर पर आपके एहसास जिम्मेदारी को जख पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है, उसकी बुनियादों को करती है। एक जुल्म है और एक जहालत है। जुल्म दर हकीकत जुल्म भी जहालत ही से मुबतनी है, जुल्म भी जहालत ही की वजह से पैदा होता है। जुल्म की वही आम सी तारीफ जिसे हमने और आपने इल्मे कला में पढ़ा है, क्या है अल अदलो, अदल क्या है कि किसी भी चीज को उसकी असल मुनासिब असल जगह रखा जाए, और जुल्म क्या है किसी चीज़ को उसके मुकाम के बरअक्स हटा के रखा जाए। बस जुल्म जो है वो वसीतर माना में एक बहुत बड़ी बुराई है जिसको यहाँ पर बयान किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी सिफात हैं कि जिनको यहाँ बयान किया गया, वो इंशाल्लाह फिर मैं अर्ज करूँगा।
बहुत सी
यूँ कहूँ के आयात में जो इंसान को ज़िम्मेदार करार दिया गया, जैसे कि सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, कि इंसान ख़ुद को बरतरी दे और ख़ुद को दूसरों से मुमताज़ और जुदा करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। इल्ला लियअबुदून का माना ही यही है कि इंसान अपने आप को साहिब मुकाम करे, साहिब बरतरी करे। मसूल किसे कहा जाता है? जिससे सवाल की, इसमें मकबूल है जिससे सवाल की जाए, बात पूछ की जाए, जिससे मुआवजा किया जाए। ये तीन, ये मजमूरी तौर पर दो कस्म की है, या इंफरादी है या इज्तिमाही है, जिसको हमारी ये जिम्मेदारी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की और एहसास है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी से बढ़कर जो चीज़ मौजूद है वो एहसास का होना है। एहसास क्या है? उस हिस का जिंदा होना है कि जो किसी भी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में आपकी मदद करेगी। अगर वो एहसास ही ना रहे, मसलन आपने देखा होगा कभी आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर जब चेकअप के लिए आता है तो मरीज़ के तलवे में या हाथ में या जिस्म के किसी भी हिस्से पर पैन से या किसी नोकीली चीज़ से उसको इस तरह ज़ोर से ऐसे करता है, ये देखने के लिए कि आया इसकी हिस जिंदा है या मर गई है, इसका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब जैसे ही आपके पैर पर लगेगा तो आप पैर अपना खींचेंगे, दूर करेंगे, क्योंकि हसास है नर्वस सिस्टम। तो ये देखता है कि आया इसका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसकी हिस जिंदा है या नहीं जिंदा है। दादा आप यूँ करेंगे तो आपकी हिस जिंदा नहीं होगी तो आप नहीं हटाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बैठे 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 आपका पैर सो जाता है और उसके बाद बंदा खड़ा हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आम हालत में बंदा खड़ा हो जाए आपकी चीज़ें निकल आएंगी, तो आपकी हिस जिंदा होती है, वहाँ सुनने में हिस मर जाती है। एहसास जिम्मेदारी जिम्मेदारी से बढ़कर, एक जिम्मेदारी है और एक एहसास जिम्मेदारी। इंसान को एहसास हो, उसकी हिस जिंदा हो कि मुझे कुछ करना चाहिए, सही, उसकी हिस जिंदा हो तो उसे करना है। ये हिस जो है वो इंसान को दो तरीके से मुमकिन है। एक ये है कि इंसान जो है वो बादिल नखास्ता गन पॉइंट पर उठ के आता है, और एक वक्त कह रहे इंसान खुद बहुत वक्त से पहले कहीं जहां उसे पहुंचना चाहिए वो पहुंचने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर यही सेशन जो हमारा हो रहा है, बहुत से दोस्त जो लेट आ रहे हैं, बहुत से दोस्त जो है वो ताखिर से आ रहे हैं, बहरहाल जो भी वजह हो उसकी, हम उस वजह में नहीं जा रहे, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये एहसास ज़िम्मेदारी का तयन करती है। तो एहसास ज़िम्मेदारी क्या है? एहसास उस हिस का जिंदा होना है जो इंसान को दर हकीकत ज़िम्मेदार बनाती है। ये दो किस्म की है, एक इनफरादी है और एक इज्तिमाई है। इनफरादी में उसकी ज़ात है कि जिसका ताल्लुक अपने आप से है, अपने खुदा से है, अपने नेचर से है, अपनी दुनिया से है। दूसरी जिम्मेदारी खानवादे की है और तीसरी जिम्मेदारी जो है वो इज्तिमा की या सोसाइटी की या उम्मत की है। और फिर तीनों के बारे में जो है हमें कुरान करीम मिलता है कि इंसान जिम्मेदार है। मसलन जो ज़ाती इनफरादी जिम्मेदारी है इंसान की, सूरह मायदा आयत नंबर 105, या अय्युह الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, ईमान लाने वालों तुम पर अपनी हिफाजत लाजिम वाजिब है, कोई भी शख्स तुमको ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि जब तुम हिदायत याफ्ता, إذا اهتديتم, जब तुम हिदायत याफ्ता। ये इंफरादी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी कौन सी है? खानवादे। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और तीसरी किस्म की जिम्मेदारी जो उम्मत की जिम्मेदारी है, जो सोसाइटी की जिम्मेदारी है, उसके लिए दो हदीसें पेश करो। एक मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से,
جس میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالتواصل والتبادل، تم پر لازمی ہے کہ تم ایک دوسرے سے جڑے رہو اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہو، یعنی مالی لحاظ سے بھی. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاطُعُ، اور تم پر لازم ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیٹ دکھانے سے، قطع تعلق کرنے سے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے پرہیز کرو. لَا تَتْرَكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور دیکھو کبھی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. فَيُوَلِّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر تم نے ترک کر دیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، بدترین لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے اور تم دعا کرو گے تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوگی. ایک یہ. دوسرا وہی مشہور و معروف رسول اللہ کی حدیث ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. کلکم راع، راع کہتے ہیں چرواہے کو، جس میں چرواہا اپنے گلے کا خیال کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان اپنے ماتحت افراد کا خیال کرتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، جو بھی ماتحت اس کے ہے اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. اب آئیے خود واضح شناسی پر، وکیبلری پر، کہ احساس ذمہ داری اور ذمہ داری سے متعلق کیا کیا لفظ ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. ایک احساس ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک تعہد ہے، ایک تکلیف ہے اور ایک حق ہے. یہ چھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ذمہ داری، ذمہ در حقیقت کسی عہدے یا کام کو اپنے گردن لینے پر ہے. جب آپ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، آپ اگرچہ کہ وعدہ نہیں کرتے، اگرچہ کہ آپ جو ہے اس کو پرومس نہیں دیتے، زبان نہیں دیتے، صحیح، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اخلاقی طور پر آپ جو ہیں وہ پابند ہو جاتے ہیں، ذمہ دار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا. یہ مثلا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جناب میں ٹرائی کروں گا، ہماری اردو زبان میں ٹرائی کا لفظ کیا ہے، یعنی میں نے نہیں آنا ہے، انشاءاللہ. بقول ہمارے تو انشاءاللہ تالا، اس پہ تالا بھی لگ جاتا ہے، انشاءاللہ تالا، ہاں جی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں آئیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، میں ٹرائی کروں گا، میں کوشش کروں گا. ذمہ داری یعنی ذمہ لینا ہے، اپنی گردن پہ لینا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کیا، جب کوئی کسی کی ذمہ داری لیتا تھا نا، تو اس کی رقبہ پہ ہوتا تھا، اس کی گردن پہ ہوتا تھا کہ میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں، کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو میری گردن پکڑ جائے گی، میری گردن پھنسے گی. ذمہ داری وہاں سے ہے. ذمہ یا ذمہ در حقیقت وہ مسئولیت لینا ہے، اس چیز کو اٹھانا ہے، اس کے بار کو در حقیقت حمل کرنا ہے. دوسری چیز مسئولیت، وہی عربی کا لفظ ہے، ذمہ بھی عربی کا لفظ ہے، مسئولیت بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی مسئول جس سے سوال کیا جائے. تیسری چیز وظیفہ ہے. وظیفہ در حقیقت یعنی وہ اہم ترین کام کہ جسے آپ نے انجام دینے کا عہد کیا ہو یا آپ نے کہا ہو، عہد نہ بھی کہ اپنی زبان سے کہا جناب میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پر. تعہد در حقیقت عہد ہی کی ایک اور شکل ہے، کہ آپ مجموعی طور پر ایک عہد کرتے ہو تو عہد کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اس عہد کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس عہد کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام تعہد ہے. یعنی ہر آن و ہر لمحے آپ در حقیقت بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی چادر اوڑھ لیں یا کسی چھت کے نیچے آ جائیں، تو آپ اس ہال میں جہاں جگہ جہاں جہاں جائیں گے آپ اس چھت کے نیچے رہیں گے، لیکن آپ اس چھت سے کب باہر نکلیں گے کہ جب آپ اس عمارت سے باہر نکل جائیں گے. تعہد در حقیقت اس عہد کی چھت کے نیچے آنا ہے کہ جس کام کو کرنے کا آپ نے عہد اور ارادہ کیا ہے. پس یہ تعہد خود بخود آپ کو احساس ذمہ داری دے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजाम देनी है। तकलीफ, तकलीफ में भी एक मेहनत का माना है, सख्ती का माना है, एक किस्म का रंज का माना है, तवज्जो रखिएगा, ठीक है ना। यानी इंसान कुल्फत इख्तियार है, तकलीफ, तकलीफ शरी जो कहा जाता है, इसी तरह हक का माना है। इससे मैं इसमें वारिद नहीं हूंगा, कुछ रिवायत अर्ज करूंगा और उसके बाद फिर आ जाऊंगा जिम्मेदारी पर। मसलन हजरत अमीर المؤمنین अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसीकुम बितक्वल्लाह फीमा अंतुम अन्हु मसूलून, मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत और ताकीद करता हूँ। किस चीज़ में? फीमा अंतुम अन्हु मसूलून, जिस चीज़ के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। खुद जो कुरान करीम में आयत है, वकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, इनसे सवाल किया जाएगा, ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। रिवायत भर उसकी जो तावील की गई है, जो माना बयान किए गए, वो मौला अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में है कि रोज़ क़यामत जब लोग जा रहे हैं तो आखिर में जो आखिरी सवाल होगा वो मौला कायनात की, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि की विलायत के बारे में होगा। वकिफूहुम, उनको रोक दो, इन्नहुम मसूलून, सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ के मुताबिक तुम्हें सवाल किया जाएगा, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक आपको सवाल, आपने क्या खाया अपनी हॉस्टल लाइफ में, कोई नहीं पूछेगा। आपने कौन सा बोनेंजा का स्वेटर पहना था, जे डॉट का पहना था, कोई नहीं पूछेगा। आपकी बेल्ट में कितने लूप थे, कोई पूछेगा आपसे बाद में, नहीं। कितने होल थे उसमें, आपकी वेस्ट कितनी थी, आप कितनी दफा बीमार हुए, तो पूछेगा। आप बाल कहाँ से कटवाते थे मौलाना, बड़े खूबसूरत बाल है, बताइए। आप कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करते थे, नहीं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपने क्या इल्मी सरमाया हासिल किया। इस पूरी तालिब इल्माना जिंदगी से आपसे मुताले सवाल किया जाएगा। जो अक्सर मैं बाज़ात बगल मारूँ दोस्तों के, आप जज्बाती हो जाते हैं समझाने में, या जब समझाने लगते हैं तो बस वो समझाने का डंडा जो है इतना चलने लगता है, जो रुकता ही नहीं है, वो संजीदगी होती है। इसलिए कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ और जो कुछ सूरत हाल मेरे सामने होती है, कि तालिब इल्म और गैर जिम्मेदार, तालिब इल्म और मसूलियत का एहसास ना करने वाला, याद रखिएगा, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आप उस आपको चकमा दें, धोखा दें, टोपी पहनाएं, जुल दें, डॉज दें, एक्स वाई जेड, फिलिंग ब्लैंक, जो भी आप मन के लिए इस्तेमाल करना चाहें, इसमें कोई भी तालिबे किसी दूसरे को न चकमा देता है, न जुल देता है, न डॉल देता है, न धोखा देता है, न टोपी बनाता है, न मामू बनाता है जी, वो सिर्फ अपने साथ हंसी मजाक करता है। और उसका अंदाज़ा आपको अभी नहीं होगा, उसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप बाहर निकल कर अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखेंगे। उस वक्त आपको जो है वो बातें याद आ रही, जैसे आज मुझे अपने उस्ताद की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे ये ईरान चले गए जिनसे रब्ता रहता है व्हाट्सएप पे, तो आज वो कहते हैं कि आका साहब आपकी फलां बात याद आती है, फलां बात याद आती है। तो कब याद आता है, कि जब इंसान उस सिनेरियो से गुजर जाता है, तो उस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा, अगर जिसकी जिम्मेदारी तुम पर अदा करनी लाजमी थी। दूसरी रिवायत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, तो एक बेदार करने वाली सलवात भेजे ना, यो सालु समा अम्मा समिया वल बसरु अम्मा नज़रा,
والفؤاد عما عقد عليه، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے آنکھ سے سوال کیا جائے گا، کان جو کچھ سنتا ہے کان سے سننے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دل میں جو خیال آتے ہیں اور دل جو گرہ لگا لیتا ہے، جیسے کوئی دل میں خیال آتا ہے نا، دل بڑا ظالم ہے، فوراً سے پکڑ کے کیچ کر لیتا ہے،
بالکل بند کر لے گا اپنے آپ کو، بھاگنے نہیں دے گا، اچھا ہو یا برا، یہ دل کی کیفیت ہے، دل کی حالت ہے، دل میں جو خیال آیا فوراً اس نے دروازہ کھولا، جو بھی سامنے جھپٹ کے اس نے اندر قید کر لیا۔ شیخ متعلی نے بابا طاہر اوریان ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر نقل کیا ہے کہ زدی دو دل کنم ہر دل فریاد، میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے دونوں سے فریاد کرتا ہوں، نالا ہوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے کہ دل ہر چدیدے کو نہ یاد، دل جو کچھ دیکھ لیتا ہے نا بس وہ پیش کر لیتا ہے، بڑی ظالم چیز ہے دل، صحیح چھوئیں چل گئی، ہر چدیدے کو نہ یاد، بار بار یاد کرتا ہے، وہ فلاں چیز یاد آ رہی ہے، فلاں چہرہ یاد آ رہا ہے، فلاں آواز یاد آ رہا ہے، فلاں کھانا یاد آ رہا ہے، فلاں منظر یاد آ رہا ہے، فلاں شخصیت سے ملے تھے، فلاں عالم سے ملے تھے، فلاں کا وہ جملہ اچھا لگ رہا ہے، کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں فولاد کا خنجر بناؤں گا اور اپنی آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں گا، اور کیوں؟ تاکہ جب آنکھیں دیکھیں گی نہیں تو دل ایزی ہو جائے گا۔ تو شیخ متعلی کہتے ہیں یہ بھائی صاحب یہ ضعیف قسم کا تقویٰ ہے، یہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے، اس کا مطلب کانوں میں سیسر ڈال دیں، زبان کو سی لیں، آدھائے شہوت کو کٹوا دیں، کسی نے نہیں کہا، یہ ناقص ہے۔ تو امام کہنا ہے کہ والفؤاد عما عقد علیہ، عقد یعنی جس سے گرہ باندھ لیتا ہے، لہذا سوچو کہ تم دل کا دروازہ دل کی کھڑکی کس کے لیے کھول رہے ہو، احساس یعنی اس حد تک انسان کو ذمہ دار ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ روز قیامت الاعوذ باللہ الاعوذ باللہ الاعوذ باللہ ہم اپنی نیتوں کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم اپنے ارادوں کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم اپنی فکروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہماری وہ فکریں جو عمل میں آتی ہیں، عمل جو در حقیقت زمینہ بنتا ہے ہماری اخروی نجات کا یا سعادت کا یا شقاوت کا یا تباہی کا یا بربادی کا، آج جو میں ہوں وہ میری نیت کی روحانی صورت وہاں سامنے آئے گی۔ اس کے بعد کہا کہ اصول کافی جلد نمبر 2 میں رسول اللہ سے روایت ہے، انی رسول انی مسئول عن تبلیغ الرسالہ، وہ دوبارہ سے دیکھوں میں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد، انی مسئول عن تبلیغ الرسالہ و اما انتم فتسالون عما حملتم من کتاب اللہ و سنتی، مجھ سے میری تبلیغ رسالت کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہ تم نے جو میری کتاب اور سنت کا کی ذمہ داری اٹھائی ہے، بحیثیت امت تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یا حتیٰ امام علی علیہ السلام کا قول ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 167، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اے اللہ کے بندو اللہ کے قانون کے بارے میں متوجہ رہو، ان کے بندوں کے بارے میں بھی، اس کے شہروں کے بارے میں بھی، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ الْبَقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، تم جہاں رہتے ہو وہاں کی بھی حفاظت تم پہ فرض ہے، اور جو جانور تمہارے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں تمہاری زندگی میں جن کا عمل دخل ہے، تم ان کے بارے میں بھی جواب دے ہو۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ لا تعصوہ، اللہ کی اطاعت کرو اور ذرہ برابر اس کے حکم سے سر پیچی مت کرو، یہاں پہ واضح طور پہ امیر المومنین نے انسان کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پس اس بنا پر ذمہ داری سے متعلق کچھ آیات اور روایت میں نے عرض کی، اور اب آتا ہے کہ ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ واقعی کوئی دمنگے سے کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی کوئی بنیادی نوعیت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی کوئی کریٹیوٹی والا کام کرنا چاہتے ہیں،
कि जो किसी दूसरे ने ना किया हो, तो जितने आप जिम्मेदार होंगे, जितने आप जवाबदेह होंगे, जवाबदेही नहीं, मुझे जवाब देना है, ये जिम्मेदारी जो है अगर आप में पैदा हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हैं, जो लोग नाबेगा होते हैं, जो लोग जीनियस होते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों को फतह कर रहे होते हैं और चोटियों पर अपने झंडे फतह के झंडे गाड़ रहे होते हैं, ये स्टील के बने हुए नहीं होते। ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनको जगाए रखती है, जो उनको बेदार किए रखती है। उसके बाद एक गरीब मिसाल इस दौर में शहीद कासिम सुलेमानी की है। ये वो लोग नहीं थे जो स्टील के थे, ये मेटल के बने हुए थे, ये रोबोट थे, ये एलियन से कोई खलाई मखलूक थे, इनके अंदर मशीनें फिट थी, नहीं। जो वो लोग थे कि जो दर हकीकत एहसास जिम्मेदारी के तहत जिंदगी बसर कर रहे थे। और ये एहसास जिम्मेदारी जिनके बारे में कहा जाता है, जब से उस ब्रिगेड की मसूलियत और जवाबदेही आपके पास आई, आपने अपने इस ओहदे के एवज एक एक ढेला पाई वसूल नहीं की। हम चार कदम चलते हैं, सोचते हैं कि जनाब पैसा क्या मिलेगा, नतीजा क्या होगा, यह ऐसा जिम्मेदारी। फिर ऐसा जिम्मेदारी कि अगर आप शौदा के वाक़े पढ़ेंगे तो फिर आपका अंदाजा होगा। ये सिर्फ बताने के नतीजे वाक़े बहुत सारे, लेकिन मैं उसको उसमें वक्त अपना नहीं ले जाऊंगा, इसलिए कि फिर वो गुफ्तगू आगे निकल जाएगी। सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि ये शहदा और खुसन शहीद कासिम सुलेमानी जैसे अफराद जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उस जिम्मेदारी के तहत जिंदगी से करते हैं। जिम्मेदारी वहाँ होती है, जिम्मेदारी या मसूलियत के सवाल का अवसर वहाँ होता है कि जहाँ पर जिम्मेदारी हो, जहाँ जिम्मेदारी नहीं है, असल आपके दायरे इख्तियार से बाहर है, वहाँ आपसे सवाल भी नहीं किया जाएगा। सवाल वहाँ होगा कि जहाँ पर आप वो काम अंजाम दे सकते हो। एक दो, कुदरत कुव्वत और इख्तियार के हामिल हो। अगर कुदरत जिम्मेदारी है, कुदरत नहीं है आप में, आपसे सवाल नहीं होगा। ताकत नहीं है आप में अंजाम देने की, आपसे सवाल नहीं होगा। जिम्मेदारी है लेकिन आप में इख्तियार नहीं है, आपको इख्तियार नहीं कि आप फला काम करें, आपसे सवाल नहीं होगा। इख्तियार होना चाहिए, कुदरत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ताकि जो है आप उसको अंजाम दे सकें। फिर तीन, ये एक पहली चार और पांचवीं, यहाँ पे नुक्ता क्या है, पांचवा नुक्ता क्या, जिम्मेदारी का सवाल वहां किया जाएगा जहां पहले से एक आशनाई मौजूद हो। मैं आप सो रहे हैं, आपके बराबर में कुछ रख के चला जाऊं और फिर आके पूछू जनाब आप ये काम अंजाम क्यों नहीं देता, और कबला साहब मैं तो सो रहा था। और सोते हुए इंसान वो अपना जिम्मेदार नहीं होता, चले जाए के दूसरे का जिम्मेदार हो, उसे ये नहीं पता होता कि सोते में कर क्या रहा है, हाथ पैर कहाँ चला रहा है। तो शिनाख्त कबली होनी चाहिए, पहले एक शिनाख्त होनी चाहिए, पहले एक आशनाई होनी चाहिए, फिर इंसान उसकी जिम्मेदारी ले। और वही चीज तकरारी तौर पर कि अंजाम देही की कुदरत आप में मौजूद हो, अंजाम देही की कुदरत आप में मौजूद हो। इस बिना पर ये वो जिम्मेदारियां हैं कि जिनको सामने रखते हुए हम कर सकते हैं। अब चूंकि वक्त जो है 8:15 तकरीबन हमने शुरू किया है और इस वक्त 9:10 हैं, बहरहाल 10-12-15 मिनट इंशाल्लाह इसको देखते हैं और जितना हो सकेगा उसको पहुंचाएंगे। कैसे जिम्मेदार बने? आप कहेंगे हमें सारे कामों को अंजाम देने का तजर्बा नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिस से हासिल कर लेते हैं। कपड़े धोना है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, एक्सपीरियंस से सीखा है, मुशाहदे ऑब्जर्वेशन से सीखा है। कपड़े इस्तरी करना है, किसी ने नहीं बताया। शूज पॉलिश करने किसी ने नहीं बताया। ब्रश टीथ करने हैं, टीथ जो है ब्रश करने हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया आपको। मुशाहिदे से सीखा, देख रहे हैं करना है। लिहाजा
जो असल चीज है कि हम जिम्मेदार बने, कुछ सिफात मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप जिम्मेदार बनना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने अंदर इन सिफात को अपनाना होगा। बज़ाहिर ये बातें बड़ी बहुत सादी सी लग रही हैं, बहुत आम सी लग रही हैं, बहुत ही सती नौयत की लग रही हैं। शायद ये बातें आपने कई जगह सुनी हुई भी हों, लेकिन दर हकीकत इनकी हकीकत और इनकी सच्चाई कहाँ खुल के सामने आएगी कि जब आप प्रैक्टिकल के मरहले पर और लेवल पर आएंगे, और जब आप कुछ चीज़ अंजाम देना चाहेंगे, उस वक्त अंदाज़ा होगा ये बातें अमली तौर पर आपकी कितनी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज ये कि जब इंसान को कोई काम ना हो, ना तजर्बा ना हो, तो वो डरता है। देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप जो है वो किसी वजह से आए, तो कम से कम जो लेक्चर हो रहा हो ना, उसमें सारे हाल बैठे, कोई सो रहा है, कोई ऊँग रहा है, कोई जाग रहा है। खुदा के लिए जिसको ऊँग आ रही है, या तो वो सब जगा के ऊँग ले, ये बाहर चला जाए, या जिसको नींद आ रही है वो बाहर चला जाए, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तालिबे जो है वो बाहर जाके सो जाए, लेकिन कम से कम क्लासरूम में ना सोए। इसलिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं सबके चेहरे को देख रहा हूँ, तो ये चीज़ इंतहाई तकलीफ दे होती है टीचर के लिए। इंतहाई तकलीफ जो होती है कि कोई टीचर आए और रात 1:30 बजे तक जो है, बल्कि 2 बजे तक मैं इस लेक्चर के लिए बैठा रहा, और फिर सुबह नमाज के बाद जो है वो बैठा, और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे, लेकिन सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मेरे को न वक्त है और न ही आपने सका तो ताकत है सुनने की। लेकिन जब मैं आऊँ रात 2 बजे, मैं सोऊँ और फिर सुबह नमाज के बाद बैठूँ, और फिर ये देखूंगा आप जो है कोई सो रहा है, किसी का मनकर डला हुआ, किसी की गर्दन झुकी हुई है, तो दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाता है। पहली जिम्मेदारी यह है कि मजहब के साथ, ये जो मैं एकदम डायरेक्ट कह देता हूँ ना, बगैर किसी मुकदमे के, आप इस वक्त पॉलिश की मंजिल पर है। अगर आपकी सही पॉलिश नहीं होगी ना, तो इसके बाद जो शाइन आने वाली है ना, आप में चमक आने वाली है, वो भी सही नहीं होगी। हमेशा जब भी कोई चीज़ पॉलिश की जाती है, तो रगड़ा जाता है, उसे जोर दिया जाता है, ताकीद की जाती है उसको। इसलिए कि अगर मैं आपसे रख रखाव रखूं, अगर मैं आपसे चापलूसी करूं, अगर मैं आपसे मुनासबत करूं, आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वक्त पे आ गए, ये मैं आपके साथ जुल्म कर रहा हूं, मैं दोस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं खैरख्वाह नासे नहीं हूं, मैं आपके साथ जुल्म कर रहा हूं। इसलिए कि इस वक्त आप उस पोजीशन में कि आपकी स्किल्स को पॉलिश किया जाए, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारा जाए, और जब मैं ये देखूं कि मेरा अमल जो है वो आपकी तख्लीकी सलाहियतों की क्रिएटिविटी को उभार नहीं रहा, बल्कि उसको और फॉल डाउन कर रहा है, तो ये फिर मैं आपका दोस्त नहीं हूंगा, मैं आपका खैरख्वाह नहीं हूँ, मैं आपको बदतरीन दुश्मन हूँ। और इसका अंदाजा फिर आपको उस वक्त होगा कि जब आप मेरी जगह आएंगे, और जब आपके सामने 50 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, और फिर जो है आप उनसे खिताब करेंगे, तो मैं फिर आपसे पूछूंगा। इसलिए मैं बगैर मुकदमे की भी कह देता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि मुमकिन है कि आप मेरे लहजे की तलखी को तो नहीं भुला सकेंगे, लेकिन मेरे माफ ज़मीर की और मेरे मतालिब की गहराई को ज़रूर दर्द कर सकेंगे। मैं बकौल डॉक्टर अली शरीफ जी के, मैं अपने लहजे की तलखी से तो माफ़ी के तलबगार हूँ, लेकिन जो है मैं अपने मुंदरजात से, अपने मलफूजात से माफ़ी के तलबगार नहीं। तो पहली चीज़ जो होनी चाहिए, खौफजदा ना हो। एक अनजाना खौफ होता है, मैं करूँगा तो क्या होगा, मैंने आज तक नहीं किया, मैं करना चाहता हूं। पहली जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदार बनना चाहते हैं, पहली जिम्मेदारी ही है ईजाद करें। जिम्मेदार बनने के लिए जिम्मेदार बने, मसूलियत पजीर बनने के लिए मसूल बने, जवाबदेह होने के लिए अभी से जवाबदेह होने की कोशिश करें, इसी स्टूडेंट लाइफ से, तब तब जाके आप जब उस सतह पे पहुंचेंगे, यानी ग्रहणी कोई ऊंची इमारत पहले दिन ऊंची नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर अगर ये बुनियाद है तो पहली मंजिल रखी जाती है, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर चौथी मंजिल, फिर पांचवीं, दसवीं, बारहवीं, पंद्रहवीं, बीसवीं, तब जाके इमारत खड़ी होती है। तालिबे इल्म एक इमारत है, इसका एक साल दर हकीकत आपने बुनियाद रख दी, अगले साल गए आप और ऊंचे हो गए, तीसरे साल के और ऊंचे हो गए, चौथे साल के और ऊंचे हो गए, मास्टर के और ऊंचे हो गए, पीएचडी के और ऊंचे हो गए, फारूक तहसील हो गए, सबसे ऊंचे हो गए। याद रखिएगा, कोई भी इमारत पहले दिन से आठवीं और दसवीं, अगर दसवीं मंजिल बनी, दसवीं मंजिल से शुरू नहीं करती है, सभी मंजिल से शुरू नहीं करेगी उसकी बिल्डिंग, वो पहली मंजिल से भी माइनस में जाकर, जी अंडरग्राउंड जाकर। आपने देखा हो कितने फ्लोर होते हैं बड़े बड़े प्लाजा में, बड़े बड़े मॉल्स में, मेज़नाइन होता है, उसके बाद माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, पार्किंग होता है, ना जाने क्या क्या होता है। उसके बाद जाके जो है वो फिर ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड फ्लोर आता है, फिर टेंथ फ्लोर आता है, फिर मसलन दूसरे फ्लोर आता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी इमारत अचानक से इमारत नहीं बन जाती, दसवीं मंजिल पहली मंजिल से शुरू करती है। तो कभी भी खौफजदा ना हो कि आप में तजर्बा नहीं। अगर आप साहिब मसबूल बनना चाहते हैं, साहिब जिम्मेदारी बनना चाहते हैं, अभी से आदत डालेंगे तो आप बन सकेंगे। लिहाजा हर किस्म का खौफ और खतर जो अनजाना आपके दिल पे छाया हुआ उसको अलग कर दें, पहली जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ी बहादुरी होगी आपकी कि आप अनजाने खौफ को अपने से निकाल दें। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि मसूल बनना, जिम्मेदार बनना, जवाबदेह बनना, दूसरों की आंधी तकलीफ नहीं है। मैं फलां की तरह क्यों बनूं, मैं फलां की तरह क्यों बनूं, भाई फलां भी तो ये काम कर रहा है, फलां भी तो इसी कामों में लगा हुआ है, फलां भी तो इसी किस्म की जिम्मेदारियों को कर रहा है, मैं क्यों करूं। नहीं, जिम्मेदार बनना दर हकीकत फिक्री और अकली तौर पर अपने आप को मजबूत और पावरफुल शो करना है। जिम्मेदार वही बने। आप में तो बहुत सारे लोग हैं कि जो जिम्मेदारी अदा करते हैं, बहुत से लोग हैं जो कन्नी कतरा जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नहीं 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 जनाब हम ये नहीं कर सकते। आप यकीन रखिए कि आज आप फला फला जिम्मेदारी से पहलू तही इख्तियार कर रहे हैं, कल जिंदगी में इससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से पहलू तही इख्तियार करेंगे। याद रखिएगा, आज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी जो है वो जब सिनेमा पे कोई चीज जाती है ना तो वो बहुत बड़ी होती है, वो बहुत बड़ी नजर आती है। एक मामूली से धब्बा भी जो होगा ना, डॉट भी जो होगा, वो बहुत बड़ी सूरत में, बदनुमा सूरत में नजर आएगा। अभी हम फिल्म बना रहे हैं अपनी जिंदगी की, कब चलेगी। जैसे कि आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, मतलब मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे यहाँ बैठा हूँ, कल आप मुझसे इंशाल्लाह बड़े स्टेज पे होंगे। तो जो कमी और कोताही मेरी रह गई है वो आज आपके सामने होगी मेरी, कल आप जब इस मंजिल पर आएंगे तो जो कमी और कोताही और झोल आप में रह गया वो सामने आएगा। लिहाजा कभी भी इस बात से खौफजदा ना हो कि ये अंधी तकलीद है। जिम्मेदार बनना अपने आप को मजबूत शो करना है। मजबूत इंसान कब इसके तो उसके हाथ और पैर मजबूत हो, उसकी फिक्र और अकल मजबूत होती है। याद रखिएगा, और मजबूत आसाब के इंसान, मजबूत आजाव जवारे के इंसान नहीं कहा है, मजबूत आसाब का इंसान मुश्किलात से लड़ता है और मुश्किलात से टकराता है और मुश्किलात को पाश पाश कर देता है। लिहाजा फिक्री तौर पर इंसान अपने आप को मजबूत करता है। तीसरी चीज मसूल बनने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए, एहसास जिम्मेदारी के लिए, वो है सही प्लानिंग और मंसूबा बंदी। खुद इस पे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आप किस तरह प्लानिंग करें किसी भी काम के लिए। सही मंसूबा बंदी अगर आप करेंगे तो आप में जिम्मेदारी पैदा हो सकती है। मैं बहुत देरी था क्योंकि इसमें बहुत सारी तफसील लिखी हुई, लेकिन मैं वक्त की वजह से उसको छोड़ रहा हूं। दूसरी चीज की फिक्री तौर पर मैंने कहा मजबूत आसाब के मालिक बने। मजबूत आसाब के लिए जरूरी है प्रैक्टिस अंजाम दो, रोजाना कोई ना कोई प्रैक्टिस करें, कोई ऐसा काम जिससे मेरी स्किल बढ़े, जिससे मेरी पावर बढ़े, जिससे मेरे कंसंट्रेशन बढ़े, जिससे मेरे तमरकुज बढ़े, जिससे मेरे सोचने समझने का अंदाज, फोकस करने का अंदाज बढ़े। किसी चीज को फोकस करना, जैसे कि अभी परसों रात जो वाकया हुआ था, कोई मौलाना आए तो सबके सब उधर देखने लगे, और जिस पे हमारे स्पीकर साहब नाराज भी हो कि आपके कंसंट्रेशन का ही हाल है, आप सेमिनार कर रहे हैं सही, उस सेमिनार में तनकीद मुझ पर भी हो सकती है, मौलाना आप भी तो नारे लगा रहे थे, लेकिन मुझे सूरत हाल थी उसको देखते हुए थोड़ा सा गरमाने के लिए, लेकिन सेमिनार के ये हाल और ये चाल नहीं होते जो हमारे यहाँ छे माजरत के साथ, कि कोई मौलवी आए तो पूरी की कौम उधर देख रही है, वो उठे बैठे उसके साथ साथ हरकत हो रही है। तो अपने एहसास जिम्मेदारी को, एहसास कुदरत ताकत को, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, जितना आप तमरकुज करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा आप तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये खुलासा नवीसी जो काफ़ी कहा जाता है समर लिखें, ये सब उसी स्किल को बढ़ाने के लिए होती है जिससे आप में ताकत और कुदरत पड़ती है फोकस करने की। चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, साबित कदमी। अगर आप चाहते हैं कि आप जवाबदेह बने आइंदा आने वाले जमाने में, साबित कदमी, खौफ ज्यादा नहीं हो, कोई मसलन कोई माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता है, सीख के नहीं आता है, दुनिया में सीखता है। दूसरा ये कि अपने आप को फिक्री कल्बी असाबी तौर पर मजबूत बनाना है। तीन, प्लानिंग करनी है। चार, कंसंट्रेशन की दर हकीकत सलाहियत को बढ़ाना है। अब इसमें पूरी तफसील है कि हर पॉइंट के पीछे जो है वो कुछ नुकात मौजूद है कि किस तरह हम जिम्मेदार बने। साबित कदमी है, स्ट्रॉन्ग फीट के साथ आप जमे रहें। साबित कदमी क्या है? साबित कदमी ये नहीं कि जनाब जो है वो आप अपने जूतों को जो है कील से गाड़ लें और जूते पहन के खड़े हो जाएं, मौलाना मैं साबित कदमी दिखा रहा हूँ, मैं हिल नहीं रहा। हिलने का नाम साबित कदमी नहीं है, हरकत में साबित कदमी होनी चाहिए, आपकी मोशन में साबित कदमी होनी चाहिए। साबित कदमी जिस्मानी लिहाज से नहीं होती, साबित कदमी फिक्रों के लिहाज से होती है। लिहाजा जितना आप साबित कर, आज आपने एक अमल किया कामयाब नहीं हुए, कोई मसला नहीं है, कल दोबारा। जो मनुष्यत के आदि होते हैं उनको एक स्लोगन दिया जाता है। जब ईरान में था तो मैं एक ऐसे इदारे से वाबस्ता था जो मानशिया छुड़ाते थे, तो कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यूज दिए, फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, तो उनसे पूछता था, फिर वो मेरे पास आते थे एडवाइस देने के लिए कि किस तरह मानशियात को छोड़ा जाए, किस तरह बुरी आदत को, अब मानशियात यानी बुरी आदत। तो उनको एक स्लोगन दिया जाता था कि बराए फकत बराए इम्रोज, सिर्फ आज के लिए ना, यानी उस शख्स में जो बिल्कुल टूट चुका है, बह चुका है, जिसके हाथ पर बंधे हुए हैं, उसको चाहिए चाहिए भरी हुई सिगरेट, उसको चाहिए इंजेक्शन किसी भी किस्म का, उसको क्या कहा जाए, सिर्फ आज ना पियो। इससे कि जब नशा टूटता है ना तो इंसान का जिस्म जो है उसका साथ नहीं दे रहा होता, तो बड़ी हालत गैर होती है। तुम ये चीजें देखी हैं इसलिए मैं आंसर कर रहा हूं। तो जब नशा टूटता है ना तो फिर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कहते हैं, फकत बड़ा है, सिर्फ आज के लिए छोड़ दो, कल के लिए कल देखा जाएगा, जिसको तवक्कुल कहते हैं ना, कल के लिए अल्लाह मालिक है, आज के लिए छोड़। क्या है कि ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाई जाती है, लिहाजा कोशिश करें कि ये साबित कदमी जो है वो आप में आनी चाहिए। अगर आज नहीं हो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, यानी ये चीज आपको अपने अंदर लानी होगी। एक स्टेप, दो स्टेप, एक दिन, दो महीने में आप कोई कमाल हासिल नहीं करेंगे। आप मुख्तलिफ महारतें रखते हैं, कोई लिखने में, कोई पढ़ने में, कोई बोलने में, कोई प्रेजेंट करने में महारतें रखता है, प्रेजेंटेशन देने में महारत रखता है, सब ने ये सीखी नहीं, ऐसा ऐसा सीखी है। और छठी चीज क्या है, ये भी आपके जमाने तालब इलमी से मखसूस है, प्लानिंग में दूसरों की मदद करें। ये जो आपसे कहा जाता है कि आप छोटी क्लास वालों को पढ़ाएं या उनकी मदद करें या मुबाहिसा करें, मुबाहिसा क्या है, ये वही चीज़ है कि दूसरों की मदद करने का जज्बा जब आपके अंदर आएगा ठीक है ना। तो जो इल्म आपने दिया है वो अपनी जब आके ट्रांसफर होगा तो अपनी एक गैप पैदा करेगा, उस गैप को फिल करने के लिए आप मजीद इल्म हासिल करेंगे। पैसा जेब में है, ये पैसा अपने बराबर वाले को 10 रुपये हो 50 रुपये हो दे दें, आप देखिएगा खजाने गैब से जो है वो 50 की जगह 500 भी आ सकते हैं। करके देखिएगा, करके देखिएगा, ठीक है। मुझे देखे देखिएगा फिर देखिए आते नहीं आते। जब तक गैप नहीं बनेगा ना, ज़कातुल इल्म में न शुरू हूं, ज़कातुल इल्म में जमू नहीं है, ज़कातुल इल्म में नोट्स राइटिंग नहीं है ना, ज़कातुल इल्म जो है वो खुलासा नवीसी समरी रिटर्न करना नहीं है, ज़कातुल इल्म न शुरू हूं। जितना नशा करोगे क्या होगा, उतना ही ज्यादा बैक से इल्म आएगा। दलील मिसाल के तौर पर मसलन ये ग्लास है, सही ये ग्लास है, और ये आप जिसको खाली करेंगे गैप हो जाएगा, पानी डाल देंगे फिर पानी निकल जाएगा, फिर गैप हो जाएगा फिर पानी डाल देंगे। जब तक इसमें से ट्रांसफर नहीं होगा ना, नया पानी नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी अपनी कैपेसिटी है। मतलब इसमें 1 kg पानी आ सकता है, 1 kg पानी आ सकता है, 1000 grams, ठीक है ना। तो पानी कम होगा गैप बनेगा, पानी मजीद आएगा। दूसरों की मदद करना जो है वो आप में क्या है, एहसास जिम्मेदारी को पैदा करने के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है। अब आइए नताइज और बहुत तेजी के साथ रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। पहली चीज आकलाना जिंदगी, विजडम के तहत, खैरत और अकल के तहत जिंदगी बसर करना। ये बज़ाहिर एक छोटा सा नारा है, लेकिन अगर ये मरहला हमें हासिल हो जाए तो हम कामयाब तरीन जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। आकलाना जिंदगी, जज्बाती नहीं, आशिकाना नहीं, दिल फेंक नहीं, ख्वाहिशात के गुलामी नहीं। इंसान अगर आकलाना जिंदगी गुजारने का आदि हो जाए या उसे आकलाना जिंदगी गुजारने का गुण हासिल हो जाए तो वो कामयाब तरीन इंसान। अकल यानी जो काम जहाँ जितना जैसे करने चाहिए आप उसको वहाँ उतना ही अंजाम दीजिए। पहला नतीजा आकलाना जिंदगी का हुसूल है। हर चीज को अकल की कसौटी फड़केंगे और फिर उसके बाद उस काम को उतना ही वक्त देंगे। जिसको मैं कहता हूँ सुबह उठें तो जिंदगी दिन भर के जितने भी काम है ना वो आप लिख लें, ये आदत डाल लें, आप देखेंगे कि आपके टाइम में इतनी बरकत आएगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वक्त की बारिश होने लगेगी आप पर, वक्त की बारिश होने लगी, करके देखिएगा। और उलमा और राफा ने कहा कि हम जितना मुनज्जम करते थे, मसलन आयतुल्ला खामनई रहबर के लिए है, इतनी तमाम तर जिम्मेदारियों के बाद नमाज शब जो पढ़ते हैं वो कम से कम 2 घंटे की होती है, जिसमें 2 नमाज अमीरुल मोमिनीन होती है और 2 नमाज जाकर तैयार होती है। अगर इमाम रजा के हरम जाते हैं या जमकरान जाते हैं तो कम से कम रहबर का एक सजदा जो आखिरी होता है वो 2 घंटे का होता है। तो सबर कर सकते हैं आप, इतना बड़ा इंसान जिस दुनिया कांप रही है उसकी इबादत के याद है। हमारी भी नमाज तमाम ने थी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुआ और फिर दाएं बाएं देखकर जी आगे निकलने की पड़ी भी होती है, जल्दी से आगे निकले। मैंने उर्फन बात कर रहा हूँ, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यह है आकलन जिंदगी। दूसरी चीज संजीदगी आती है। संजीदगी यानी दरहा किसी हर चीज को देखने की और परखने की सलाहियत। संजीवनी की क्या मध्य मौका में अच्छी गाती है, लाओबालीपन सहलंगारी सखी निगाह रखना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, देखिए ठीक है। ये संजीदगी यानी हर चीज को मेजर करना, नापना, तोलना, परखना, समझना, ये दूसरी चीज आपको हासिल होगी। और अगर ये आप हासिल हो जाए, आप लोगों को परख सकते हैं, आप लोगों को तोल सकते हैं, आप कामों को तोल सकते हैं, आप कामों को सही मौके पर अंजाम दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप ये जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप कभी भागेंगे नहीं, फरार नहीं करेंगे। अगर आप में सलाहियत होगी, आप कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ। गालिबन परसों की कॉन्फ्रेंस में था कि जिसमें एक मुकर्रर ने वो वाक्य सुनाया था, गालिबन इसी शहीद के बारे में था, कि एक प्लान तैयार किया जाना था कि अगर ये 500 अफराद तैयार कामयाब हो गए इस प्लान में तो 5,000 और 50,000 कामयाब हो जाएंगे, अगर 500 अफराद नाकाम हो गए तो 50,000 भी नाकाम हो जाएंगे। लोगों ने कहा 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, 20 दिन, उसने कहा 5 दिन में करूंगा। 5 दिन में हैरान हो करें, कम से कम 10 दिन चाहिए। कहते 3 दिन में इमाम रजा के पास गुजारूंगा, 14 दिन मेरे पास मौजूद होगा। ये यकीन होना चाहिए इंसान को। तीसरा जो फायदा होगा वह है दिक्कत फिक्र अमल। फिक्र में भी दिक्कत, फोकस करने की सलाहियत पैदा होगी, और अमल में भी, अमल में भी हर चीज आपकी नपी तुली होगी। इसका अंदाजा शायद आपको अभी ना हो, लेकिन अगर आप आयतुल्लाह जाफर सवानी की किताब है अजीम लोगों की कामयाबी के राज, वो उठा के पढ़िए, मिल जाएगी आपको बाजार में, होगी अजीम लोगों की कामयाबी के राज, नेट पे सर्च करें मिल जाएगी आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ढूंढने से मिलेगी, लेकिन लेट पे रखे नहीं देंगे आपको। वहां देखिएगा कि फिक्र अमल में दिक्कत और बिल्कुल फोकस। एक और नतीजा जो आपको मिलने वाला है वो कम वसाइल में ज्यादा मसाइल को क्या करना है, हल करना है, यह सलाहियत आएगी। फोकस वर्क आप में आएगा, फोकस करने की सलाहियत आएगी, टीम वर्क आप में आएगा, गिरोही काम टीम वर्क के साथ मिलकर जो है ना आप कामों का अंजाम दें। इसमें और भी सवाल थे लेकिन वक्त पूरा हो गया। ये है दर हकीकत एहसास जिम्मेदारी, और ये है दर हकीकत एहसास जिम्मेदारी के नतीजे में मिलने वाले वो रिजल्ट्स जो मुझे और आपको मिलेगा। और सिलसिले में दुआ करनी चाहिए, यानी दुआ करें अल्लाह से कि वो हमें जिम्मेदार बनाए, हमें एहसास दिलाए कि हमें क्या जिम्मेदारी अदा करनी। और इस वक्त जो इस्फहान के एक बहुत मशहूर आरिफ हैं, उनका नाम खोल रहा हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम, बहरहाल तो वो आयतुल्लाह बहजत के घर गए। तो आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है कि जो इमाम ज़माना के पास रफ्त व आमद रखता है। तो मेरे आयतुल्लाह बहजत के मेरे दोस्त आयतुल्लाह बहजत कहते हैं मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या इन हालिया चंद दिनों में तुम इमाम ज़माना की खिदमत पहुंचे हो, तो उसने कहा जी हाँ मैं अभी कुछ दिन पहले पहुँचा। फिर जो आयतुल्लाह बहजत ये आरिफ जो इस्फहान के मुनक़ल करें आयतुल्लाह बहजत से, आयतुल्लाह बहजत उन्हें बता रहे हैं, और ये बातें आयतुल्लाह बहजत की ज़िंदगी में नहीं, आयतुल्लाह बहजत के इंतकाल के बाद सामने आ रही। जो उरफा होते हैं ना बकल मार लब दूखता है, वो लबों को सी देते हैं, उनके मरने के बाद ये बातें सामने आती हैं। तो आयतुल्लाह बहजत ने कहा क्या क्या अभी तुमने पूछा है इमाम से, कहे इमाम आपका सहून तब होगा। तो कहते मैंने पूछा है इमाम से, आयतुल्लाह बहजत दोस्त कहते हैं मैं इमाम की खिदमत मैंने पूछा मौला आपका जो होगा, कब, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, इतना होगा कि बूढ़े अफराद भी अपनी निगाहों से अपनी आंखों के सामने से मेरे जहूर को इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये इस्फहान के जो आरिफ थे उन्होंने आयतुल्लाह बहजत मुझे दूर से शुमार चंद साल आया,
मैं दोस्त उम्र क्या है, उसने कहा अगले भाई तो 62 ईयर्स का है, इससे भी ज़्यादा बूढ़े हुआ, ये ज़माना जिम्मेदारी का है। हज़रत ज़हरा की आमद के हवाले ज़माने की सुर्खियाँ बता रही कोई आने वाला है। रहबर के बयानात अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि कोई आने वाला है। ये बड़ी बड़ी इंतसारात, ये कामयाबियाँ, ये बड़े बड़े बुतों का टूटना, ये रहबर मुअज़्ज़म की दर हकीकत आलम गैब से इत्तिसाल और आपको बहुत सारे मतालिब पर आने वाली खबरों को पहले से बयान करना, ये सब दर हकीकत एक बड़े इनकलाब की नवीद दे रहे हैं। हमें तैयार होना, वो तो आ जाएंगे, तुम खुद को भी तैयार करो, मुझे भी तैयार होना है, अपने आप को भी तैयार करना है। हमें से कितने अफराद होंगे जिन्होंने सुबह ये सोचा होगा कि आज इमाम का जोर होने वाला है। अच्छा मैंने कहा मेरा ईमान तो इतना नहीं है कि मैं आज सोचूं, मैं उठूँ सुबह और मैं सोचूं कि आज इमाम का जोर होने वाला है। यानी मैं इतना दहेज हो गया हूँ कि इमाम के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं इमाम के बारे में फिक्र करना भी नहीं चाहता। हाँ ठीक होगा देखा, यानी ये हाल है हमारे ईमान का, मुझ जैसे लोगों के ईमान का, कि हम सोचना भी नहीं चाहते, सोचने की जिम्मेदारी भी नहीं लेते इमाम के लिए। अजान मोहतरम मेरे तालिब इल्म साथी, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरी तबलीग में मेरे दस्तबाजों और मुस्तकबिल तुम्हारा है। अपने आप को तैयार करो, कलाम में एहसास जिम्मेदार बनो, मसूलियत पज़ीर बनो, मसूलियत को उठाने वाले बनो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें एहसास जिम्मेदारी अता फरमाए और हमें सही माना में ईमान के लिए एहसास जिम्मेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.